नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। गिरीश, आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति आपका।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत 2028 विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, भुवनेश्वर में होगा आयोजन। ऑलिंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, अंजुल रामचंद्रन, हरिहरन अमसाकरण क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इंडियन ओपन स्क्वाश में भारत के अभय सिंह, वीर चोटरानी, अनाहत सिंह और जोशना चिनप्पा समेत कई खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में। और हॉकी विश्व कप 2026 का कार्यक्रम घोषित, भारतीय पुरुष टीम 15 अगस्त और महिला टीम 16 अगस्त से करेगी अभियान की शुरुआत। भारत 2028 विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। पोलैंड के तोरुन में विश्व एथलेटिक्स परिषद की बैठक में इस प्रतियोगिता की मेजबानी का अधिकार ओडिशा के भुवनेश्वर को दिया गया।
जनवरी में विश्व एथलेटिक्स परिषद के सदस्यों ने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंडोर स्टेडियम का दौरा किया और वहां की सुविधाओं से संतुष्ट हुए। इससे पहले ओडिशा कई बड़ी स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर चुका है, लेकिन ये ओडिशा के लिए एक बहुत बड़ा अवसर साबित होने जा रहा है, जहां वह विश्व के शीर्ष एथलीटों की मेजबानी करेगा। 2017 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुई थी। पिछले वर्ष ओडिशा ने भुवनेश्वर में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी थी, जिसमें दुनिया भर से 200 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 24 और 25 मार्च को कलिंगा के इंडोर स्टेडियम में ही आयोजित की जाएगी। ओडिशा देश में ट्रैक एंड फील्ड के लिए भी एक प्रमुख केंद्र है। ओडिशा के साथ ही भारत के लिए ये मेजबानी गौरव का विषय होगी। 2031 विश्व सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भी भारत बोली लगा रहा है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
उन तमाम प्रतियोगिताओं जिनकी दावेदारी का भारत लगातार मादा भरता है, उनके लिए ये मेजबानी कितना बड़ा समर्थन देगी भारत को?
बिल्कुल, काफ़ी बड़ा समर्थन देगी। पिछले दो साल से देखें तो कई इवेंट्स हुए, जैसे पैरालंपिक्स की भी मेजबानी जो है यहाँ पर, जो पैरा एथलीट्स की जो मेजबानी है वो यहाँ पर हुई थी। और जैसा कि प्रियंका की रिपोर्ट में बताया कि इस साल जनवरी में जब वर्ल्ड एथलेटिक्स का डेलीगेशन उड़ीसा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सूर्यवंशी सुराज और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सचिन यादव से मिले थे, तो उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये क्या उड़ीसा को मिलेगा या नहीं। उस वक्त हालांकि न्यूजीलैंड भी एक रेस में शामिल था, लेकिन आज वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन क्यो, जो काफी अपने जमाने के मशहूर दिग्गज एथलीट रहे हैं, चार ओलंपिक गोल्ड जीता है उन्होंने आज पोलैंड में इसकी घोषणा की। और साथ साथ 2028 और 2030 इस दो एडिशन की उन्होंने घोषणा की, इस भारत में उड़ीसा जैसा कि 2028 और कजाकिस्तान अस्ताना 2030 की मेजबानी करेगा। और इसके साथ अभी वहां पर आज बोर्ड मीटिंग चल रही है, और इसके अलावा कल से 20 से 22 मार्च को तोरुन पोलैंड में ये 2026 का एडिशन की वो मेजबानी कर रहे हैं। तो एक तरफ आप देखें कि शक्ति, मैं ये बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि क्या मायने रखते हैं उड़ीसा को मिलना, जिस तरह से और भी देश इसमें शामिल है, तो कई लगभग 100 से ज्यादा एक मापदंड होता है, पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें आपको उस पर एक टिक मार्क लगाना पड़ता है हर एक पैरामीटर पे कि क्या ये मापदंड पे खड़े उतर रहे हैं या नहीं, जैसे कि कॉम्पिटिशन की फैसिलिटीज है कि नहीं, उसके अलावा ट्रेनिंग, वार्म अप, मतलब ये सिर्फ नहीं है कि इवेंट एक जगह करा दिया, इसके अलावा कि जब जो बाकी ट्रेनिंग जो एथलीट है वो कहाँ ट्रेन करेंगे, वो वार्म अप्स कहाँ करेंगे, अपने मतलब डिसिप्लिन जो भी है वो अपने जो मैचेस खेलेंगे, उसके अलावा क्या एयरपोर्ट्स इतने सारे देश के जो प्रतिभावान एथलीट्स आएंगे उनको वहां पर उसके लिए फैसिलिटीज है कि नहीं। तो इन सब चीजों के लिए तो उड़ीसा ऑलरेडी मतलब जो है वहां पर उत्तीर्ण हो चुका है, क्योंकि हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जा चुका है, कई बड़े इवेंट हो चुके हैं, आईएसएल के मैचेस उसी कलिंगा जो फैसिलिटी स्पोर्ट्स फैसिलिटी वहां पर हो चुके हैं, होटल रूम्स है कि नहीं, फिर ब्रॉडकास्ट कंपाउंड कैसा होगा, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगी, ऑडियंस को जो फैसिलिटी मिली कैसी होगी, हेल्थ एंड सेफ्टी वो बहुत मायने रखती है, ऑफिशियल टेक्नीशियंस को क्या जो है वहां पर सुविधाएं मिलेगी, इंडोर है तो क्या कूलिंग और वेंटिलेशन की फैसिलिटी कैसी रहेगी, इन सब चीजों के अलावा ये सारे चीजें ध्यान में रखे गए हैं। और 13 पुरुष और 13 महिला जो 26 कोर डिसिप्लिन अभी अभी तो खेला जा रहा है, क्या हो सकता है कि उसमें और कोई एडिशन और एडिशन हो जाए, तो स्प्रिंट हर्डल जैसे 60 मीटर का हर्डल्स है, 400 मीटर की रेस होती है, डिस्टेंस 800 मीटर 1500 मीटर 3000 मीटर, और जंप उसमें हाई जंप पोल वॉल्ट लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप शॉर्ट पुट और 400 मीटर रिले की ये सारी प्रतियोगिता इसमें होती है। तो एक तरह से जो भारतीय एथलेटिक फेडरेशन है उनको बहुत बहुत बधाई कि एक विश्वव्यापी जो ये एक आयोजन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए अब से उनको काफ़ी वहाँ पर तैयारियां करनी पड़ेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं 2030 में अहमदाबाद जो है राष्ट्रमंडल खेलों के हम आयोजन कर रहे हैं, और 2010 में भी हमने राष्ट्रमंडल खेलों का सफल आयोजन किया था। उसके बाद लगातार कई ऐसी प्रतिस्पर्धाएं भारत में हुई है, दिल्ली में कई होती आई हैं, और इंडियन ओपन बैडमिंटन काफी ये सब होता है, तो इस लिहाज से उड़ीसा जो कि डिजर्व करता है हर एक तरह के स्पोर्ट्स को, और काफी अगर 5-8 साल देखें तो राज्य सरकार भारत सरकार ने जिस तरह से मदद दी है, और वहां के दर्शक सबसे बड़ी बात है, मैं उड़ीसा के दर्शकों को सलाम करना चाहूंगा, कोई भी खेल हो, आप हॉकी देखिए, हॉकी का तो खैर वो नर्सरी गढ़ रहा है, आप फुटबॉल देखिए, हॉकी देखिए, दूसरे आप अदर स्पोर्ट्स देखें, सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट का वेन्यू भुवनेश्वर कटक में तो है, लेकिन उसके अलावा अगर दूसरे आप मल्टी जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उसके लिए वो एक गढ़ माना जाता है, और वहाँ के जो दर्शक हैं वो हर एक खेल को उतना ही प्यार करते हैं।
जी बिल्कुल, अब कहा जा सकता है कि हॉकी के बाद उड़ीसा जो है एथलेटिक्स का भी एक अच्छा हब बन के उभरने के लिए तैयार है। और बात करते हैं बैडमिंटन की। फ्रांस में खेले जा रहे ऑरलींस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज तन्वी शर्मा, अर्जुन रामचंद्रन और हरिहरन अमसा कर्णन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जानते हैं आज खेले गए मैचों का हाल।
फ्रांस के पैलेस डे स्पोर्ट्स में आज कई भारतीय खिलाड़ी अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जोर आजमाते नजर आए। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने अपने ही देश की अनमोल खरब को 21-14 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अर्जुन मदाथिल रामचंद्रन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डन और एडम प्रिंगल को 26-24 21-14 से हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारत के आयुष शेट्टी का सामना जापान के युदाई ओकिमोतो से होगा। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और रुत्रिका शिवानी गद्दे भी आज अपना प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
गिरीश, अगर इसके सिवा बात कर ली जाए तो अभी कुछ ही देर में मलविका बंसोर का मुकाबला भी होना, और ईशा रानी बरुआ का जो कि प्री क्वार्टर फाइनल में कल पहुंचे थे अपने अपने मुकाबले जीतकर। भारतीय बैडमिंटन कह सकते हैं कि उसका ग्राफ जो है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाता हुआ नजर आया पिछले 3-4 सालों में।
3-4 साल में हाँ ऊपर ही गया, लेकिन आप पिछले 1 साल में देखें तो थोड़ा नीचे आया है। उसके कई वजह भी है, और क्या था कि जब आप अब हम हमारे श्रोता और दर्शक जो सवाल पूछ सकते हैं कि जब पहले साइना नेहवाल थी तब पीवी सिंधु, अब नेक्स्ट पीवी सिंधु कौन? आज जैसे कि तन्वी शर्मा ने अनमोल खरब को हराया, या फिर आप देखेंगे पिछले मुकाबले में अब जैसे आयुष शेट्टी है या तन्वी शर्मा, ये बड़े नाम उभर के आ रहे हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं कि आप विश्व मंच पे लगातार ये जीतते आए,
इसमें कन्वर्ट कर पाए
या कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसका कारण भी कई ढूंढा गया। तो एक हमारी जो बेंच जो स्ट्रेंथ है वो बीच में कहीं ना कहीं कमी खली, इसका एक वजह यह भी था जो बताया गया कि पहले सेंटर हैदराबाद में था, हैदराबाद में ही गोपीचंद एकेडमी या विमल कुमार एकेडमी या जो भी एकेडमी थी सारे खिलाड़ी एक साथ वहां पे खेलते थे, और उससे उनको जो अपनी कमियां हैं और या जो उनको बेनिफिट मिलता है। अब क्या हुआ कि अब एक एकेडमी गुवाहाटी में भी है, जो कि अच्छी बात है, कई ऐसे होते हैं कि जो हमारे पूर्वोत्तर के जो खिलाड़ी है जो हैदराबाद जाके नहीं ट्रेन कर सकते, तो इस लिहाज से वहां भी एक सेंटर खोला गया। तो मुझे लगता है कि हम उस ट्रांजिशन दौर से गुजर रहे हैं जहां पर समय लगेगा, लेकिन हाँ ये चीज हमें पहले करनी चाहिए थी, लेकिन अब काफी काम हो रहा है। जैसे आयुष शेट्टी है जो पुरुष वर्ग में निकल के आ रहे हैं, अभी आप देखेंगे जो हम पिछले ओलंपिक से लेकर अभी वाले अगर इस साल से लेकर अगले साल ओलंपिक के जो क्वालिफिकेशन हो जाएंगे वहां रैंकिंग काफी मायने होगी। हमारे टॉप 10 में सिर्फ एक ही खिलाड़ी जो है चिराग
जी
जो है वो उसमें है, चिराग शेट्टी और जो डबल्स के हैं सात्विक साई रेड्डी, उसके अलावा अभी कोई नहीं है पहले, और कुछ लहज तक जो है लक्ष्य सेन थोड़ा बहुत उन्होंने बीच में कमाल किया। तो इसमें काम करना पड़ेगा और इसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे लगता है कि ये जो सेकेंड थर्ड जो जो एक हमारी
जनरेशन है
तो उस वो आगे आएगी।
जी बिल्कुल, आपने बात की इन खिलाड़ियों की, अगर उम्र देखी जाए तो उन्नति हुड्डा 18 साल की हैं, खुद 20 साल के हैं, तो कह सकते हैं कि भविष्य उज्ज्वल है और भरपूर संभावनाएं हैं।
बिल्कुल।
इंडियन ओपन स्क्वाश के दूसरे दिन भी आज भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। पुरुषों में भारत के अभय सिंह और वीर चौधरी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला वर्ग में अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हॉकी विश्व कप 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। भारत अपने विश्व कप के अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के साथ मुकाबले से करेगा। आइए जानते हैं विश्व कप में भारत का पूरा शेड्यूल।
बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित होने जा रहे हॉकी विश्व कप में भारत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे खेला जाना है। इसके बाद 17 अगस्त को भारत का मुकाबला चौथी रैंक वाली टीम इंग्लैंड से एम्स्टेल वीन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में होगा, और अपने ग्रुप स्टेज के अंतिम मुकाबले में 19 अगस्त को भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। ये हाई वोल्टेज मैच शाम 6:30 बजे से एम्स्टेल वीन के हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर काबिज भारत को पाकिस्तान, वेल्स और इंग्लैंड के साथ पूल डी में रखा गया है। पूल में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, जबकि अगले दो स्थानों पर रहने वाली टीमें क्रॉसओवर मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। पहले राउंड के मैच 20 अगस्त तक चलेंगे और नॉकआउट चरण 21 अगस्त से शुरू होगा। वहीं महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम अपना अभियान 16 अगस्त को एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में एशियन चैंपियन चीन के खिलाफ करेगी। इसके बाद 18 अगस्त को भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में भारतीय टीम 20 अगस्त को इंग्लैंड के सामने होगी। भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप जीतकर इस टूर्नामेंट में जगह बनाई है, जबकि महिला टीम ने हैदराबाद में आयोजित क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल करके विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स के।
गिरीश, अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, दोनों टीमें अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन क्या ये टीमें विश्व कप के लिए अभी अपनी तैयारियों को कह सकते हैं कि अंतिम रूप देती नजर आ रही हैं?
देखिए, हमने एशिया कप जीत के सीधा क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन अगर आप हाल के परफॉर्मेंस देखेंगे, जहां पर प्रो लीग की बात करूं मैं, तो इस साल जो हमारा राउरकेला में जो फरवरी में जो लीग खेला गया, तो वहां पर भारत 1-3 से बेल्जियम से हारा, फिर 0-8 अर्जेंटीना, फिर 2-4 बेल्जियम और 2-4 से वापस अर्जेंटीना से हारा। तो जो सबसे बड़ी जो हार थी, जो कि मैं पछा नहीं पाया या कई हॉकी खिलाड़ी, जो कि 0-8 की जो वो हार थी अर्जेंटीना के से, तो आप ये देखिए, हमने करीब 19 गोल जो है 4 मैचेस में कंसीड किया है, और हमारा जो अटैक था वो काफ़ी, मतलब आप समझिए कि पिछड़ापन रहा अटैक में। लेकिन बात करूं मैं होबार्ट, जहां ऑस्ट्रेलिया में जो हमने लेग खेला, वहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा बहुत तो हमने बराबरी की, लेकिन इतना नहीं था कि हम वहां भी जो है फ्रंट लाइन में रहे। तो मुझे लगता है कि अभी इस समय ये इस टीम को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और 1975 के बाद हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता है जी। तो ये एक जो हमारे अभी नौजवान टीम है हॉकी की, उनको यहाँ पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि ओलंपिक में हमने बैक टू बैक जो है मेडल्स लिए हैं, लेकिन अगर अभी की हम बात करें, आज के दिन हॉकी टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और इनको काफ़ी यहाँ पर मेहनत और मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी।
बिल्कुल, और ऐसा कि जैसा देखा जाए कि आज पुरुष टीम के कोच क्रक फुल्टन ने कहा भी कि टीम एक नई स्ट्रेटजी पे विचार कर रही है, जिसके साथ वो उतरती हुई नजर आएगी। तो देखते हैं कितना रंग लाती है उनकी नई स्ट्रेटजी
तो पहले की शूट आउट जो होते हैं उसमें ही वो काम कर ले। बहुत ज्यादा मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया लीग में भारतीय टीम ने वहां गंवाए हैं, तो शूट आउट जो 8 सेकंड का मिलता है, वहां पर गोल कन्वर्ट करना या रोकना, उसमें भारतीय टीम के खिलाड़ी, डिफेंडर्स या आप अटैकर्स हो, उनको काम करना पड़ेगा, और गोलकीपर को तो स्वाभाविक रूप से उनका तो रोल बहुत ही बढ़ जाता है।
जी बिल्कुल, उनकी भूमिकाएं बढ़ जाती हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। गिरीश, आपका धन्यवाद।
शुक्रिया।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।